نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم تفہیم السنہ سیریز کی کتاب نمبر 13 طلاق کے مسائل آج ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے چیپٹر نمبر 1 سے. کتاب کے اعتبار سے دیکھیے تو پیج نمبر 41 ہے اور پہلا باب ہمیشہ کی طرح جو ان کی کتابوں میں ہوتا ہے وہ ہے نیت کے مسائل. طریقہ کار وہی ہوگا, آپ سب کو بھی بتا دیتی ہوں کہ ہم عربی حدیث ساتھ مل کر پڑھیں گے اور اس کے بعد جہاں میں اردو پڑھوں گی آپ لوگ بھی دیکھیں گے, اور کسی چیز میں اگر آپ کو کوئی چیز ایکسٹرا فیل ہوئی کہ میں نے آپ کو بتائی ہے تو اس کو آپ چاہیں تو الگ سے نوٹ پیڈ پہ نوٹ کر لیں یا اپنے پاس ایک ڈائری رکھ لیں. لیکن ان کتابوں سے فائدہ اٹھانے کا جو عمومی طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب ہاتھ میں ضرور ہو, کاغذ پین یعنی پینسل ایسی ہو کہ جب حدیث پڑھیں تو اس کو بالکل اپنے سامنے محسوس کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اب حدیث پڑھنا بھی آئے گا. قرآن کی تلاوت تو ہم لوگ کرتے ہیں لیکن حدیث پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے, اور خاص طور پہ عربی میں حدیث کو پڑھنے کا اجر کیا ہے, فائدہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگتی ہے کہ ایک انسان تر و تازہ رکھتا ہے. کبھی بھی آپ کو اپنا دل پریشان دکھے, کسل ماتا ہوا دکھے اور آپ کو ایسے لگے کہ بس عجیب سی نکاہت ہے, کوئی حدیث پڑھیں عربی کی. شرط یہ ہے کہ آپ اس کو عربی میں بڑے اچھے طریقے سے پڑھیں, آپ خود اپنے اندر ایک کھلا پن محسوس کریں گے. تھکے میں لوگ گولیاں کھاتے ہیں نا, علاج کرتے ہیں اپنا. آپ جب بھی خود کو محسوس کریں کہ میں ڈاؤن ہو رہی ہوں, میں گر رہی ہوں, میرے اندر کوئی کمی آ رہی ہے, یقین کریں قرآن کی تلاوت شروع کر دیں, کوئی آیت شروع کر دیں, حدیث پڑھیں. یہ پوری اصل میں دیکھا جائے تو حدیثوں کی بک ہے, صرف اس میں یہ کہ ٹاپک باندھے گئے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے سے ہم سب کا شرح صدر بھی ہوگا. تو آئیے شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ یہ بک پڑھنے کے دوران ہمارا ذہن اتنا زیادہ کھول دے کہ اس موضوع پر ہم بہت اچھی طرح سے پھر سمجھیں. چھوٹی سی بات ٹاپک کے بارے میں بھی کہہ دوں گی, تھوڑا سا انٹرو میں بات ہو بھی گئی تھی کہ طلاق ایک بہت اہم ایشو ہے. ہر شادی شدہ جوڑے کو شادی سے پہلے ہی اس موضوع پہ علم ہونا چاہیے, کیونکہ اس موضوع پر علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط انداز سے زندگیاں بسر کرتے ہیں. بعض لوگ اس نام کو سن کر بہت گھبرا جاتے ہیں, لیکن میں یہاں ایسے ہی کہتی ہوں کہ ہم جہنم کی باتیں بھی تو پڑھتے ہیں نا, ہم میں سے کوئی جہنم میں جانا تو نہیں چاہتا نا, لیکن ہم علم تو لیتے ہیں نا. تو ہمیشہ انسان کو باطل علم بھی لینے پڑتے ہیں کئی جگہ, یعنی باطل سے مراد کیسی چیزیں کہ جو انسان چاہتا نہیں, کراہت کے ساتھ ہوتی ہیں. اور طلاق کی بک پڑھنے کے دوران یہ مت گھبرائیے کہ اس میں آتے ہی طلاق کی باتیں, بلکہ شروع کا حصہ بک کا پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر لوگوں میں عام کر دی جائیں تو کبھی طلاق کی نوبت آئے گی بھی نہیں, الا ماشاء اللہ چند گنتی کی باتیں. اگر آپ سیرت پڑھیں اور احادیث کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا, کوئی ایک آدھا واقعہ تھا. آپ سب نے بھی تفسیروں میں سنا ہوگا خالہ, ان کے شوہر نے ان کو ماں کہہ دیا. اسی طرح ایک صحابی تھے عقیل ان کا نام تھا, ان کی بہن کو شوہر نے طلاق دی, یعنی اکا دکا واقعات ہوتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ یہ علم کم ہو گیا لیکن ان چیزوں پر عمل نہیں ہے. تو شروع کرتے ہیں پہلا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے. اور ان مفسر کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے ہر کتاب نیت کے مسائل سے شروع کیے, تو آپ اور میں بھی اس وقت اپنی نیت کو چیک کریں ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. تو آپ کو اپنی نیت پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اس علم کو سیکھ کر ایک تو علم کا فائدہ حاصل کر سکیں, اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کو پڑھ کر اپنا محاسبہ بھی کریں اور دوسروں کی مدد بھی کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے فہم کو کھول دے. تو نیت, نیت کے مسائل. میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ نیت لفظ کا روٹ کیا ہے؟ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے لیکن اندر بہت ہی فرق ہے. دیکھنے میں کوئی اگر بغیر سوچے کہہ دے گا تو نون یا تا, نیت نون یا تا نہیں ہے, نون واو یا نوا کہتے ہیں گٹھلی کو. تو نیت گٹھلی کی طرح دل میں چھپی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ گٹھلی باہر پڑی رہے تو کبھی درخت نہیں لگے گا, لیکن جو ہی وہ گٹھلی زمین کے اندر جاتی ہے, مٹی میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اگ جاتی ہے. اسی طرح میرے آپ کے کسی کام کی برکت ہماری نیتوں سے ہے. اس وقت آپ کا یہاں آنا, آپ کا اپنے گھر کو کھولنا, آپ کا سیکھنا سکھانا, اس سارے میں آپ کی مدد کرنا, اس سب کی قبولیت کا انحصار آپ کی میری نیت پر ہے. تو نیت کے مسائل, پہلی بات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. आइए जरा मिलकर मेरे साथ हदीस दोहराइएगा। इसका तरीका क्या है? पहली हदीस तो हम पूरी पढ़ेंगे, बाकी जो हदीस तवील हुआ करेगी उसका हम सिर्फ अंदर का हिस्सा मतन पढ़ेंगे। तो मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे सब यक जुबान बोलेंगे। अन उमर इब्निल खत्ताबी रदियल्लाहु अन्हु कौल سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اب یہاں سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ये जो लफ्ज नवा है ना, ये रूट है इस वक्त नियत लफ्ज का। फमन कानत हिजरतहु इला दुनिया कुछ ने इलत कहा था ना, तो अलिफ लाम नहीं है दान दुनिया के साथ, इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन فحجرته الى ما هاجر اليه। अब इसका उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। यानी इस हदीस को हदीस की इस्तेलाह में खबर वाहिद भी कहते हैं, यानी इस हदीस की रिवायत सिर्फ हजरत उमर से मिलती है। इसके बावजूद इसको इतनी बरकत हासिल हुई कि सिर्फ एक सहाबी से बात है, लेकिन तकरीबन हदीस की हर किताब में ये हदीस मौजूद होती है। क्या है हदीस? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है, हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी इसने नियत की। लिहाजा जिस शख्स ने दुनिया हासिल करने की नियत से हिजरत की, इसे दुनिया मिलेगी, और जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की, इसे औरत ही मिलेगी। बस मुहाजिर की हिजरत का सिला वही है जिसके लिए इसने हिजरत की। इसे बुखारी ने रिवायत किया। तो इससे मुझे और आपको क्या मोटिवेशन मिलता है? काम तो एक ही होता है ना। देखिए, इसको समझिएगा कि हम अपने छोटे छोटे कामों को इबादत कैसे कर सकते हैं, बल्कि एक जुमला है कि आदात को इबादात में कैसे बदलें। नियत कर लें। आप सबने सुबह नाश्ता किया होगा, रोज करते हैं, ज़रूरत है। आप आज ये नियत करते हैं कि मैंने नाश्ता इसलिए करना है कि इस नाश्ते से हासिल शुदा एनर्जी मुझे इस पढ़ने और पढ़ाने में मदद देगी, मुझे नींद ना आए, मेरा शुगर लेवल लो ना हो जाए। तो ये खाना खाना आपका इबादत है। आप शावर भी लेते हैं, ज़रूरियात है इंसान की, लेकिन आज आप इस सोच से लेते हैं कि मैं जब शावर लेके जाऊंगी तो मैं फ्रेश रहूंगी, मुझे पसीना नहीं आएगा, लोगों को मेरे से स्मेल नहीं आएगी और मैं ज़्यादा फोकस करूंगी, तो ये शावर भी आपकी इबादत है। घर का काम, सफाई सुथराई, हत्ता के हर निजी मामला, आपस के ताल्लुकात घर वालों से, शौहर से, बीवी से, इस सब में नियत अच्छी कर लिया करें। और याद रखिए कि नियत क्या है? अमलुल कल्ब। जुबान से नहीं कहना। मैं और आप यहाँ आने से पहले ये नहीं खड़े होकर कह रहे थे कि निकलती हूँ घर से, बैठूंगी गाड़ी में, जाऊंगी इस तरफ। पहुंच गए ना, तो नियत की तो पहुंच गए। जो नहीं आ सके, उन्होंने एक तो हो सकता है नियत ही ना की हो, मोस्टली यही होता है। हाँ, कुछ लोगों की नियतें होंगी लेकिन टूट गई, अल्लाह ने अपना आप उनसे मनवा लिया, इरादे करवा लिए। तो लेकिन यह है कि आप और मैं जुबान से अल्फाज को नहीं बोलेंगे, तो लिहाजा किसी भी इबादत के करते वक्त सिवाय हज और उमरे के, हज और उमरे की नियत के अल्फाज अहदीस से साबित है। इसके अलावा किसी और अमल के करने के हमें हदीस से, मुंह से कहने की बातें नहीं मिलती। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी नियतों को बेहतर कर ले। अगला मसला देखिए, किनाई अल्फाज जिनमें तलाक की नियत हो, अदा करने से तलाक वाके हो जाती है वरना नहीं होती। यह है वो मसला जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि इस टॉपिक में नियत का क्या ताल्लुक। तो मसला क्या निकला है? किनाया क्या होता है? छुपा के पेश करना। कान क्या होता है? लफ्ज कान, कान कनान, छुपी हुई चीज को कहते हैं। कानों को भी कान इसीलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल अंदर छुपे हुए हैं। तो किनाया कहते हैं असल चीज को छुपाना और कुछ और पेश करना। मसलन जैसे आप देखिए कुरान पाक में इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत निसा में, औला मस्तुमुन निसा, और तुमने लम्स किया हो अपनी औरतों से। अब लम्स से मुराद छूना भी है, टच करना, शेक हैंड, लेकिन वहां किनाया है जिमा का, यानी शौहर बीवी के ताल्लुक को वहां अल्लाह ताला ने लम्स कह दिया। इस कैफियत को किनाया कहते हैं, यानी असल बात को ढके छुपे अल्फाज से बयान करना। तो अगर कोई मर्द अपनी बीवी से कुछ ऐसे अल्फाज में बात करता है, कुछ ऐसे लफ्ज बोलता है कि नियत तलाक की हो, अदा करने से हो जाती है, यानी लफ्ज तलाक कहना जरूरी नहीं। अब ये क्या होगा, ये आगे हम पढ़ते जाएंगे। हदीस मेरे साथ दोहराइएगा, मैं पढ़ूंगी शुरू से, आप पढ़ेंगी वहां से जहां से नबी सल्लम के अल्फाज हैं, लेकिन जहां से मैं पढ़ूं आप उसको बिल्कुल अपनी पेंसिल की नोक के साथ देखें, और आपको देखें और खुद भी देखें कि अगर आप खुद पढ़ती तो कैसे पढ़ती। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा अन इब्नतल जौनी लम्मा उदखिलत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दना मिनहा कालत आऊज़ु बिल्लाहि मिनका قال لها। अब आगे अल्फाज हैं जो मोटे अल्फाज हैं, ये अल्लाह के नबी के, आप दोहरा लीजिए। लकद उज़्ती बिअज़ीमी الحقی بأهلکی। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जॉन की बेटी अस्मा जब निकाह के बाद, यानी जॉन नाम है और अस्मा उनकी बेटी, अस्मा जब निकाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की गई और आप सोहबत करने के लिए इसके करीब हुए तो कहने लगी, मैं आपसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। अच्छा, पेज कैसे पलटते हैं, आवाज भी ना है। एक इल्म की महफिल में तालिब इल्म कैसे पेज पलटते हैं, हमारे असलाब कैसे पलटते थे पेज, तो वहाँ क्या होता था कि अगर लिखते हुए किसी की लिखने की आवाज़ आती थी तो उसकी हदीस नहीं लेते थे इमाम बुखारी, कहते थे हो सकता है सुनने में शुभ आया हो। तो ये बात मैंने सिर्फ तरबियत के लिए कही, आपको घबराने के लिए नहीं कही। नेक्स्ट टाइम ऐसे पेज पलटिएगा कि बिल्कुल आपको एहसास भी ना हो। आपने इर्शाद फरमाया, तूने अजीम ज़ात की पनाह मांगी है, लिहाजा अपने घर वालों के पास चली जा। इसे बुखारी ने रिवायत किया। अब आप देखिए कि ये औरत का नसीब था, ये वाहिद औरत है कि जो नबी सल्लम के निकाह में आई थी, लेकिन इन्होंने आपकी बीवी बनना नहीं चाहा। इसके अलावा तो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत अल-अहज़ाब में, अल्लाह के नबी की बीवियों को इख्तियार दे दिया गया था कि आप चाहें तो नबी के साथ रहें, चाहें तो चली जाएं। तो बग़ैर किसी से मशवरा किए सब ने आपको ही चूज़ किया था, लेकिन इस औरत की किस्मत की बात थी, कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ने उसके लिए कहा। तो अब यहाँ देखिए नबी सल्लम ने उसको क्या कहा कि तुम अपने घर चली जाओ। अब ये अल्फाज अदा करने क्या समझ आ रहे हैं कि आपने उसको ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो ये किनाया था, लेकिन दिल में आपकी नीयत ये थी कि फिर मैं अब इसको आज़ाद करता हूँ। तो लिहाजा इससे पता चला कि असल चीज़ फिर वो शौहर बताएगा, ना मैं, ना आप, ना खाला, ना पुप्पो। लोग ऐसे मसले बहुत सारे दूसरों के बिहाफ पे पूछते हैं, तो जिसने कहे हैं उसको पता होता है कि मैंने किस तरह से ये बात की थी। तो बात अपने लिए बस लिख लीजिए कि नियत के साथ तलाक होती है, अल्फाज के साथ नहीं, ये कोड वर्ड रख लीजिए। फिर एक और इसके बारे में हजरत इमाम मालिक की एक कोटेशन है, इसको पढ़ ले, ये हदीस नहीं है इसलिए मैं इसको अरबी में नहीं पढ़ूंगी, उर्दू पढ़ते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को इराक से किसी आदमी ने खत लिखा कि एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा है, हबलू की अला गारिबी की, यानी तेरी रस्सी तेरी कोहान पर है। हजरत उमर ने हाकिम इराक को लिखा कि इस शख्स से कहो कि हज के दौरान मुझे मक्का में मिले। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहे थे कि एक शख्स इनसे मिला और सलाम किया। हजरत उमर ने इससे दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? इसने कहा, मैं वही शख्स हूँ जिसे आपने मक्का में मिलने का हुक्म दिया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें रब काबा की कसम देख कर पूछता हूँ, जब तूने मस्कूरा, मस्कूरा क्या, जिनका जिक्र हुआ, यानी वो कलेमात जिनका जिक्र हुआ जुबान से अदा कर लिए, तो तुम्हारी नीयत क्या थी? आदमी ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, अगर आप किसी दूसरी जगह मुझसे कसम लेते तो मैं सच्ची बात ना कहता, लेकिन यहाँ सच्ची बात बता रहा हूँ कि इस वक्त मेरी नीयत तलाक की ही थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो तेरी नीयत थी बस वो हो गया। इमाम मालिक ने इसको रिवायत किया। अब आप देखिए इसमें हदीस नहीं है ना, तो ऐसी चीज़ को असर कहते हैं, तो लिहाजा इससे क्या पता चला कि नीयत के साथ तलाक का ताल्लुक है। अगला मसला, तलाक देने की नीयत ना हो तो ज़बरदस्ती दिलाई गई तलाक वाक़े नहीं होती। عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم आप तो रहिएगा, ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، بھول اور جبر کی حالت میں کیا ہوا کام معاف فرما دیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، کوئی کسی کو کسی بھی طرح سے مائل کرتا ہے تو پھر وہ طلاق نہیں ہوگی، اس کو حالات پہ دیکھا جائے گا۔ تو سارے چیپٹر کا خلاصہ کیا ہے کہ طلاق کا تعلق نیت سے ہے۔ اگر دل میں نیت ہو طلاق دینے کی، الفاظ اگر ڈائریکٹ لفظ طلاق کے نہ بھی ہوں تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا اور وہ اس وقت مجبوری میں کسی وجہ سے کہہ بھی دیتا ہے کہ ہاں میں طلاق دیتا ہوں، لیکن وہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی اس وقت اور وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار نہیں پاتا تھا۔ اب اگلا ٹاپک جو ہے دیکھیے گا، کراہت الطلاق۔ کراہ کا لفظ کرہن سے ہے، کاف راہ سے، طلاق کی کراہت۔ کراہن کا لفظ یا کراہت کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، تون او کرہن۔ یہ بھی غالب سورۃ الاحزاب میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کہا تھا کہ تم خوشی سے آتے ہو یا نہ خوشی سے آتے ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں طلاق کا کیا مقام ہے، کیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور کیا مردوں کو ہر وقت دھمکیاں دینی چاہیے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا پھر عورتوں کو ہر وقت یہ مطالبے کرنے چاہیے کہ تم مجھے فارغ کر دو اور میرا فیصلہ کر دو۔ تو آئیے دیکھتی ہے، ہنسی مذاق، غصہ یا سنجیدگی میں سے ہر حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدہن جد وحزلہن جد۔ وہ کون سی ہیں تین چیزیں؟ آپ چاہیں تو پینسل سے 1 2 3 لکھ لیجئے، النکاح والطلاق والرجعۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں میں سنجیدگی اور ہنسی مذاق میں کہی گئی بات واقع ہو جاتی ہے، یعنی چاہے سنجیدگی سے کوئی کہے، چاہے ہنسی مذاق میں کہے۔ اب ہنسی مذاق دیکھ لیجئے، پھر ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، اگر شوہر بیوی ڈرامے میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو ہنسی مذاق میں کہہ رہے ہیں، کھیل میں کہہ رہے ہیں، تو یہ بہت سارے کانٹراڈکٹری ایشوز اس پہ اٹھتے ہیں، کبھی آپ نے بھی سنے ہوں گے ایسے ایشوز آتے ہیں۔ تو مذاق میں بھی کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اب وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک نکاح، یعنی کھیل کھیل میں آپ نکاح پڑھا دیں، چلو تم مولوی صاحب بن جاؤ اور یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، آؤ ان کا نکاح پڑھاتے ہیں، ہو جائے گا؟ کھیل، تماشا، مزہ، ہنسی، ایسی چیزوں کو کھیل نہیں بنانا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ پھر دوسری چیز طلاق، شوہر بیوی کو کہ جب میں تمہیں طلاق دیتا، بعد میں کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، وہ مذاق اب آپ کو مہنگا پڑے گا۔ دیکھیے، شوہر بیوی کے معاملے میں زبان اتنی کم استعمال ہونی چاہیے کہ کبھی بھی آپ کو محسوس ہونے لگے نا کہ یہ جو بات کہی ہے یہ کہیں نہ کہیں بھگتنی پڑے گی، مت کریں۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی آپ کو ایڈوائس دوں گی، چھوٹی سی ایڈوائس، یعنی ہمارے کلچر میں مرد دوسری شادی کی بات کرتے ہیں، بیویاں چڑھتی ہیں، حوروں کی بات ہوتی ہے تو چڑھاتے ہیں، طلاق کھیل مذاق ہوتا ہے۔ کبھی اس حد تک اپنے تعلق کو آنے ہی نہ دیں، اتنی بے تکلفی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، آپ کو اپنے شوہر سے اتنا بے تکلف ہونے کی ضرورت قطن نہیں، اور نہ ان کو خود سے کبھی اتنا بے تکلف ہونے دیں کہ وہ مذاق میں دوسری شادی کی باتیں کریں۔ سنجیدی، ایک جگہ رک جائے اور بالکل سپارٹ فیس کر لے۔ مرد کہتے ہیں نا میں دوسری کر لوں، نہ اسمائل، نہ غصہ، نہ یون، کیوں؟ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس کو مذاق نہ بتائیں، جسے کھلتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی وقت کوئی یہ ایسی بات کہتا ہے طلاق دے دوں گا، چھوڑ دوں گا، جسٹ اس وقت اس معاملے کو رفع دفع کرے، جب وقت گزر جائے، پھر اکیلے میں جب وہ موڈ اچھا ہو ان کا اور آپ کا بگڑ جائے، اور آپ کے آج کے بعد آپ نے کبھی میرے سے یہ بات نہیں کہنی، اس وقت کچھ نہ کہیں۔ دیکھیے، عقل مند بیویاں جو ہوتی ہیں نا وہ مردوں کو خود ہی ٹرین کر لیتی ہیں، اور بے وقوف بیویاں ہوتی ہیں نا وہ خود بخود ان کی زبان کھلواتی ہیں۔ بہت غیر مہذب لگتے ہیں وہ مرد جو بات بات پہ دوسری شادی کی یا طلاق کی باتیں کرتے ہیں، تو کھیل نہیں بنانا چاہیے ان چیزوں کو۔ تیسری چیز رجوع، طلاق چل رہی تھی، عدت ہو رہی تھی، عدت کے دوران شوہر نے رجوع کر لیا، بعد میں کہا نہیں نہیں وہ تو میں نے مذاق کیا تھا، تو نہیں وہ ہو گیا۔ تو تین چیزوں میں سنجیدگی ضروری ہے۔ फिर बिला वजह तलाक का मुतालबा करने वाली औरत जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। अन सौबान रदी अल्लाहु अन्हो अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, धराइएगा, अय्युमम रातिन, देखिए मीम से मीम मिल रहा है, अय्युमम रातिन, अय्युमम रातिन सअलत ज़ौजहा तलाकन मिन गैरी बासिन फहरामुन अलैहा राइहतुल जन्ना। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने अपने शोहर से बिला वजह तलाक मांगी, इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। इसे तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया। अब इसके साथ अगली हदीस भी पढ़ लें तो मैं इन दोनों को इकट्ठा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। बिला उजर खुला तलब करने वाली औरत मुनाफिक है। खुला किसको कहते हैं? उर्दू में आपने सुना एक होता है ना, खुलासी, जान खुलासी करना, बस उसको जहन में ले, साउंड है, रूट फर्क है। खुला क्या होता है? औरत का तलब करना। औरत तलाक दे नहीं सकती, मांग सकती है, तो औरत के तलाक मांगने को खुला कहते हैं। इस पर भी बहुत सारे लोग ची ची करते हैं कि जी कि औरत को तलाक देने की इजाज़त क्यों नहीं दी। तो सिंपल सी बात है, निकाह किसकी तरफ से प्रपोजल था? सूरह बकरा में आप लोग पढ़ चुके हैं यकीनन कि उसके हाथ में निकाह की गिरह। निकाह मर्द करता है, लड़की के बाप के जरिए लड़की से, ठीक है? तो तलाक का हक भी उसी का, जिसने गिरह लगाई थी वो खोलेगा। दूसरी वजह यह है कि एक मर्द शादी के मौके पे बहुत खर्च करता है। अब हमारी तरह तो उल्टे पुल्टे खर्चों में खर्च करता है ना, जिसका कल कुछ भी नहीं लेन देन। लेकिन इस्लामिकली आप देखिए कि मर्द घर की जिम्मेदारी लेता है, उसके रहने का इंतजाम करता है, उसके सोने बैठने की जगह बनाता है। अब मर्द बेचारा हक मेहर देकर शादी करे, पता चला 3 महीने बाद औरत ने उसको तलाक दे दी, तो नुकसान किसका हुआ? और मर्द का हुआ ना। फिर उसको भी तो अगली शादी करने के लिए फिर पैसे जमा करने होंगे ना, सबके बाप रईस तो नहीं होते जो उनके पैसों में मदद कर दे। तो एक मर्द जो पैसे लगाकर शादी करता है और औरत बिला वजह ही उसके साथ नखरा करती है, तो माली नुकसान भी उस मर्द का बहुत सारा है। इसलिए ऐसी औरत को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकती। आप नोट करें, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर से आ रही होगी। फिर इसी तरह ऐसी औरत को यहाँ क्या कहा गया? मुनाफिक कहा गया। अन सौबान रदी अल्लाह अन्हो अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला अल मुख्तलियाती। अब आपको इसमें समझ आ रही है, अल मुख्तलियाती इसका रूट क्या होगा? खुलई होगा। तो मुख्तलिया कहते हैं वो औरत जो खुला मांगे। देखिए इसमें ता आ गई है ना, तो ता के साथ सीक है, टू सीक, तलब करना, इस्तखारा, इस्तगासा, वही लफ्ज़ है। तो मुख्तलियात जमा है मुख्तलियतुन की, और मुख्तलिया कहते हैं खुला मांगने वाली औरत को। कौन? हुन्नल मुनाफिकात। ये हदीस आप याद करेंगे, 3 लफ्ज़ है ना सिर्फ, छोटी सी हदीस है, दोहराएं दोबारा, अल मुख्तलियाती, हुन्नल मुनाफिकातु, المختلياتي هن المنافقات। और इसका तर्जमा भी तो मुश्किल नहीं है ना। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला वजह खुला हासिल करने वाली औरतें मुनाफिक हैं। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। अब आपके जहन में जो क्वेश्चन है, एक तो ये कि खुला के मसाइल आगे आएंगे, पूरा बाब है इसमें खुला के बारे में, तो वहाँ देखेंगे। लेकिन यहाँ याद रखिए कि औरत की तरफ से इस बात का मुतालबा कि मुझे फारिग कर दिया जाए, ये बज़ाहर जब थोड़ा सा इंसान का जहन परेशान होता है तो ये एक बड़ी छोटी बात लगती है। लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने औरत को इस बात से रोक कर आने वाले दौर की बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात से बचाया। यानी अगर आपके जहन में कहीं भी कोई थोड़ा सा गुस्सा या एग्रेसिवनेस आ रही है ना, हाँ औरत को ऐसा क्यों कहा? अभी अगली बातें आगे पढ़ेंगे कि मर्द के लिए भी कोई इतना पसंदीदा अमल नहीं है तलाक देने का। लेकिन आप इधर एक लिख लीजिए जुमला, औरत को खुला से रोक कर, बिला वजह तलाक मांगने से रोक कर, अल्लाह ने आने वाली जिंदगी में पेश आने वाले बहुत बड़े बड़े फितनों से बचा लिया। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझ लें, बात आगे जाके भी इंशाल्लाह हम करेंगे कि जब भी कभी इंसान के हालात खराब होते हैं ना, तो उसको लगता है इसका एक ही हल है, जान छुड़ा लो, जान छुड़ा लो, जान छुड़ा लो, जान छुड़ा लो। फिर हर गुस्सा, गम, तकलीफ उसकी वजह, वो वजह दिखती है, चूंकि यहाँ शादी हुई तो ये हुआ, चूंकि ये मर्द मिला तो ये हुआ, चूंके चूंके चूंके। आप जान तो छुड़ा के देखें, आप खून के आंसू रोएंगी, आपको लगेगा कि ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, मसलन आप देखिए ना कि अगर एक औरत अपने मर्द के घर में इस तरह से अपनी आप को मुश्किल में समझती है, तो उसको करना क्या चाहिए, उसको पॉजिटिव एंड पे देखना चाहिए। इसको आप इस तरह बस समझ लें, अभी फिलहाल इतनी बात करते हैं, ज़्यादा नहीं करना चाहती, इसके वक्त पे करेंगे जहाँ मौजू आएगा। आप देखिए कि पाँव में दर्द है, किसी के पाँव की उंगली के अंदर शीशा चुभ गया, तकलीफ तो बहुत है ना, चुभ रही है ना, वाकई चुभ रही है, चलने में दुश्वारी है, अरबों की के पाँव काट दो, पाँव काट दो, पाँव काट, जू के पाँव में दर्द है तो पाँव काट दो। उसने ये नहीं सोचा कि अभी तो पाँव के अंगूठे में दर्द है, काबिले बर्दाश्त है, फिर भी चल रही हूँ, टेक लगा के जो जू ही पाँव कटेगा, पहली बात है कटने की तकलीफ होगी, इमेजिनेशन में लाए ना, पाँव कटेगा उस वक्त तकलीफ होगी, चले वो भी हील अप हो जाएगा, तो सारी उम्र के लिए बगैर पाँव के चलना। शौहर जो होता है ना, उसको मैं पाँव नहीं कहना चाह रही, लेकिन याद रखिए वो एक गाड़ी के दूसरे पहिए की तरह होता है, जब वो साथ होगा तो आपको लगेगा कि ये बेकार है, लड़ता है, गुस्से वाला है, बहुत फजूल खर्चा है, बहुत पैसा ज़ाया करता है, वक्त नहीं देता लेता। जिस दिन ये पाँव कटेगा ना आपसे, अल्लाह ना करे, फिर आप धड़ाम से नीचे गिरेंगे, और आप देखिए फिर इंसान गिरता है, फिर लामहाला उसको किसी दूसरे का सहारा चाहिए, या तो उस पाँव की जगह फिर कोई प्लास्टिक का पाँव लगेगा, या लाठी रखेंगे, बिसाखी लेंगे, तो क्या उससे वो पाँव नहीं बेहतरता। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने औरत को पहले से सिखा दी। अब अगली चीज़ देखिए कि इससे आगे क्या है कि बिला सबब औरत को तलाक देना बहुत बड़ा गुनाह है। यानी ये ना सोचिए कि औरत को अल्लाह ताला ने कह दिया, बल्कि मर्द को भी कह दिया। अन इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि एक आदमी किसी औरत से निकाह कर ले और फिर जब अपनी ज़रूरत पूरी कर ले तो इसे तलाक दे दे और इसका महर भी अदा ना करे। इसे हाकिम ने रिवायत किया। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक तरफ औरत के ऊपर पाबंदी है तो दूसरी तरफ मर्द पर भी पाबंदी है, उसको भी एक खेल नहीं बना लेना चाहिए। और मैंने अक्सर अपने पढ़ाने के दौरान एक जुमला बोला कि तलाक इमरजेंसी डोर है। आम हालात में अगर आप वो खोलते हैं ना तो सायरन बजते हैं, कभी आप जहाज में बैठे हैं तो आपको वो इमरजेंसी एग्जिट के सामने जगह नहीं देते, एंड पे कोई आए और कोई और ना मिले तो वहां बिठाते हैं, क्यों कि वो किसी वक्त भी खतरे की जद में आ सकते हैं। तो तलाक का दरवाजा ना तो मर्द खोलेगा ना औरत खोलेगा, ये सिर्फ उस वक्त खुलेगा जब जहाज के गिरने का खतरा होगा। तो जिंदगी का जहाज जब गिरे फिर तलाक का दरवाजा खोल दो, अदरवाइज समझौता कीजिए, अरेंज कीजिए, क्योंकि इसके बाद भी फिर किसी मर्द या किसी औरत से ही शादी होगी, ना वो फरिश्ता होगा, ना वो जिन होगा, ना वो परी होगी, ना हूर होगी। तो कुछ बातें इधर नहीं आप बर्दाश्त कर सकते, तो वो आपको उससे बहुत बड़ी बड़ी बातें दूसरी जगह बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो लिहाजा दोनों की तरफ इसको कह दिया गया। फिर अगला इशू देखिए, तलाक लेने के लिए बीवी को शौहर के खिलाफ भड़काने वाला शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو أبداً على سيده। حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے, یعنی غلام کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیے عموماً یہ شخص کون ہوتا ہے, یا تو ماں ہوتی ہے نا, या बहन हो सकती है या फिर कोई और होगा जिसकी कोई नीयत ख़राब है। तो कभी भी आप भी अपने लिए रखें, कभी अपने भाइयों को अपनी भाभियों के ख़िलाफ़ ना करें। कभी आप अपने रिश्तेदारों को, जिसका रिश्ता अब हो गया, आप कभी उसको उसकी बीवी के ख़िलाफ़ ना करें। बाज़ बस सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि हम बड़ी अच्छी बीवी हैं, तो दूसरों के मर्दों के सामने उनकी बीवियों को लेट डाउन किया जाता है। ख़ास तौर पर ससुराली रिश्तों में अगर इस तरह की बातें होती हैं तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है, इससे इंसान को बचना चाहिए। और ऐसा शख्स फिर नबी सल्लम की बात की रोशनी में नाफरमाना। चलिए ये तो थोड़े ही लोग होंगे, ये जो अगली बात की गई कि ग़ुलाम को उसके आका के या मालिक के ख़िलाफ़ करना, आज ग़ुलाम तो नहीं है, कहीं आप मासियों को दूसरों के ख़िलाफ़ तो नहीं करते? अपना मुहासबा कर लें, उधर से निकाल लूँ इसको ताकि इधर आ जाए। हैं, कभी ऐसा भी होता है ये दूसरी बाजी के घर बहुत टाइम लगाती है, तो बस अब इसको उनके खिलाफ करूं ताकि उसकी जॉब छूटे तो मेरे पास आ जाए। देखिए, बी फेयर, सीधे रहे, कूलू कौलन सदीदा, किसी के साथ भी ज्यादती को इस्लाम पसंद नहीं करता। अगली रिवायत, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها وتنكح فإنما لها ما قدر لها۔ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपनी बहन, मुराद क्या है, सौकन, नोट कीजिए या लिखिए, नबी सल्लम ने सौकन को बहन कहा, आज हम कह सकते हैं अल्लाह की बना, कोई औरत अपनी बहन यानी सौकन की तलाक का मुतालबा ना करे कि सौकन का हिस्सा भी खुद ले सके और इसकी जगह खुद निकाह कर ले, इसलिए कि जो इसकी किस्मत में लिखा है इसे मिल जाएगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। यानी दो बीवियों के बीच में चपकलश हो सकती है, एक औरत सिर्फ इसलिए अपने शौहर की दूसरी बीवी को शौहर के खिलाफ या शौहर को उसके खिलाफ करे कि जब ये निकल जाएगी तो मुझे ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा, या सौकन से मुराद आप इसको सिर्फ वो सौकन ना रखे कि शादीशुदा दो औरतें, बल्कि बाज़ दफ़ा एक औरत है किसी मर्द से उसके निकाह की रग़बत है, तो उसकी बीवी या किसी और औरत जिससे उसकी मंगनी हुई या कुछ है, तो उसको उसके खिलाफ ना करें। अगर वो उसकी किस्मत में है तो यूं भी मिल जाएगा, और अगर किस्मत में नहीं तो ये उसको तलाक दिलवा भी देगी तो भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे मामलों में बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मियाँ बीवी को जुदा करना इब्लीस का सबसे ज्यादा पसंदीदा फेल है। अन जाबिर रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابلیس يدعو عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت۔ हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्लीस का तख्त पानी पर है, वहाँ से वो अपने लश्कर दुनिया में फसाद बर्पा करने के लिए भेजता है। इब्लीस को सबसे ज़्यादा महबूब वो शैतान होता है जो सबसे बड़ा फितना बर्पा करे। जब शैतान वापस आकर अपनी अपनी कारकर्दगी बताते हैं तो एक शैतान कहता है कि मैंने फुलां फुलां कारनामा सर अंजाम दिया। इब्लीस कहता है तूने कुछ भी नहीं किया, यानी वो बड़े से बड़ा गुनाह कर भी है तो इब्लीस का दिल नहीं खुश होता। फिर दूसरा शैतान आता है और वो कहता है कि मैं फुलां बियां बीवी के पीछे पड़ा रहा, हत्ता के दोनों में लहतगी करवा दी। इबलीस इसे अपने पास तख्त पर बिठा लेता है और कहता है, तूने खूब किया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो क्या पता चला कि जब शौहर बीवी झगड़ते हैं और बात तलाक तक आती है, सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? शैतान को होती है। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि इबलीस का पसंदीदा शुगल घर तोड़वाना है, क्योंकि जब किसी सोसाइटी के घरों में बेसकूनी होती है ना, तो पूरी सोसाइटी बिखरती है। आज भी वेस्ट में जो आपको माहौल दिखता है, उसकी बहुत बड़ी वजह घरों का टूटना है। वहाँ का फैमिली सेटअप बहुत वीक है। इसी की वजह से फिर लोग जो हैं वो दूसरों के साथ भी ठीक तरह से नहीं डील कर पाते। तो शैतान को खुश करना चाहिए कि नाराज? नाराज करना चाहिए ना। कभी भी घर में झगड़े की नौबत आए ना, तो उससे बचे। एक लेक्चर है झगड़े क्यों होते हैं, छोटा सा है, 20-25 मिनट का है। उसकी लंदन में काफ़ी सीरीज बना के इन लोगों ने बांटी थी। यानी अपना रोल देखिए, झगड़ा क्यों होता है। चले झगड़ा वो शुरू करते हैं, बढ़ाती मैं तो नहीं, चिंगारी वो लगाते हैं, उस पर तेल मैं तो नहीं डालती। जब आप अपने आप को देखते जाएंगे ना, तो आप फील करेंगे कि आपको कम अज़ कम अपना रोल जो है समझ आ जाएगा, तो 80% झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। कोई शख्स आपसे कितना भी लड़ना चाहे, आप नहीं लड़ना चाहते, वो कभी नहीं लड़ेगा। बल्कि उसको आप पे गुस्सा आएगा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ और तुम आगे से सुन नहीं रही, तुम सीरियस नहीं हो रही, तुम मजाक में आ गई, तुम सीरियस नहीं लेती, राइट? आप अपने आप को इतना ठंडा और कोल्ड कर लें कि दूसरा बंदा आपके सामने आकर झाग बन जाए। गुस्से में भरा शख्स आपके पास आ रहा है बाहर से, और आप उसको देखकर स्माइल करते हैं, चिल करते हैं, क्या करेगा आगे से? हमारा हाल ये कि एक तो किसी का गुस्सा सुनकर आगे से खुद भी बोलते हैं, तेवरी चढ़ा लेते हैं, शक्ल और ज्यादा सख्त कर लेते हैं, और फिर आगे से हम बिल्कुल तलखी के साथ खामोश हो जाते हैं। गुस्सा और बढ़ता है। गुस्से को हमेशा नरमी से, मोहब्बत से पीछे करें। जैसे आग को आग से नहीं बल्कि पानी से बुझाया जाता है, तो अगर आप पानी बन जाएंगी तो आग कभी भी नहीं जलेगी। तो आपका पानी बनना एक वक्त आएगा कि दूसरे को भी जरूर सोचने पे मजबूर करेगा। अभी तक जितनी बात हुई उसकी रोशनी में कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, कोई बात जो इससे रेलिवेंट हो तो पूछ सकते हैं। जी आप
तो फिर उस वक्त जब उनको मशवरा दिया जाए कि ठीक है, अगर आपका नहीं गुजारा होगा तो आप अच्छे तरीके से रहना हो जाए।
देखिए आपने ये बहुत बड़ी एक बात कह दी है, मैं थोड़ी सी इस पर आपकी मदद करूंगी। आपने कहा कि कुछ लोग आके आपसे मशवरा मांगते हैं, क्यों मांगते हैं आपसे? पहली बात कि मैं आपको नहीं अब कह रही, सबको कह रही हूँ, बस दफा हमारी दोस्तें या हमारे वो प्यारे जिनको हम बहन ने के कजन्स के जिनसे हमारी बेतकल्फी है, वो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं हमारा घर तोड़ने में। सवाल कीजिए कि मुझसे क्यों किया? क्या मैं एक्सपर्ट हूँ? क्या मैंने पब्लिक रिलेशंस पढ़े हुए हैं? क्या मैंने कुछ ऐसे तजुर्बे किए हुए हैं? क्या मेरी ज़िंदगी में तजुर्बात की कोई चमक है? अगर नहीं है ना, तो कभी किसी की बात के अंदर ना आए, पहली चीज़ है। हाँ, आप करें, आज तो ये एक पूरा इदारा बन चुका है, काउंसलिंग, लोगों ने पैसे लेकर एज अ प्रोफेशन इसको इख्तियार किया, और वेस्ट में इवन नॉन मुस्लिम लोगों के बीच में काउंसलिंग होती है। जब शौहर बीवी थोड़े से खटे पटे रहते हैं ना, तो फिर उनको गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर मुहैया किए जाते हैं, फिर वो अकेले में उनको बिल्कुल वही तरीका जो कुरान का है ना, बिलीव मी वेस्ट ने ले लिया, हकम मिन अहली हा व हकम अहलिया, उधर से उधर। फिर उसके बाद एकदम तलाक नहीं वो देने देते, एक साल तक, मुझे याद नहीं है अब यूके का क्या मामला है, लेकिन एक साल तक सेपरेशन होती है, नो डाइवोर्स, बस तुम जाओ अपने घर। तुम उनको क्या लगे, उन्होंने जहाँ जाके अपना कोई शौक पूरा करना होता कर करा लेते हैं। अव्वल तो वैसे में शादियाँ होती कोई नहीं है, यकीन करें 80% लोग बगैर शादी के रहते हैं, उसी में बड़े खुश हैं, वो कहते हैं हम शादी करके क्यों झंझट पाले। 20-20 साल साथ रहते हैं, शादी नहीं करते, सिर्फ इस डर से कि शादी कर ली तो तलाक देनी बहुत मुश्किल है। वेस्ट में जिस तरह शादी मुश्किल है ना, उस तरह तलाक भी मुश्किल है। या कह लीजिए कि अगर कोई वाकई नेक नियती से शादी करना चाहता है ना, तो उसको शादी करनी आसान है, लेकिन तलाक आसान नहीं है। एक साल पूरा दोनों अलग रहते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उनकी काउंसलिंग की जाती है, सोचा तुमने, देखा कुछ ने, फिर भी ना बने ना, फिर मर्द के ऊपर इतनी ज़्यादा लाइबिलिटी, घर आधा बीवी लेगी, फिर उसके पैसों में से हिस्सा लेगी, इसलिए फिर वो शादी करता ही नहीं है। کہتے ہیں کون اپنی جان پہ بس ہے. جب خواہش ایسے پوری ہو رہی ہے, بچے بھی ہو رہے ہیں, ساتھ رہ بھی رہے ہیں, تو پھر ختم. کئی ایسے ساتھی ہمیں راستوں میں جب ملتے ہیں پوچھے, کہتے ہیں یس وی آر جسٹ فرینڈس. تو جسٹ فرینڈس کے اندر ہی 6 بچے بھی ہیں. شادی کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ کہتے ہیں ٹو مچ لائبلٹی. ٹھیک ہے, تو اسلام نے عورت کو اس چیز میں بہت پروٹیکٹ کیا ہے. پھر دوسری بات یہ دیکھیے کہ اگر آپ کرتے ہی ہیں کسی کی کاؤنسلنگ, یہ بات پلے سے باندھ لیں, جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سنیں آپ اپنی دوست کو کچھ نہ کہیں. دیکھیے بعض دفعہ ہم صرف یہ سوچیں کہ چونکہ یہ میری دوست ہے تو سچ کہہ رہی ہوگی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں, اگر آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ کچھ انبن محسوس ہوتی ہے یا آپ سیٹ نہیں ہو رہے, آپ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے, آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ٹو مچ, آپ 1 مہینہ اپنی دوستوں سے بات کرنا چھوڑ دیں, اپنی ماں باپ سے بات کرنا چھوڑ دیں اس موضوع پہ خاص طور پہ. یعنی جب آپ اچھی بچی کسی دوسرے سے شیئر کرتے ہیں, اچھی بچی سمجھتے ہیں نا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ شیئر کریں. اب میں ادھر بیٹھی ہوں آپ کے سامنے, ہم سب لوگ اس کمرے میں, یہاں کا ماحول, یہاں کی گرمی, یہاں کی سردی, یہاں کی آوازیں, یہاں کا اچھا پن ہمیں دکھ رہا ہے نا. اب میں یہاں فون کروں باہر کسی اور سے, باہر اس کمرے کے سیٹ اپ کے بارے میں مشورہ مانگوں, وہ مجھے کیا دیں گے؟ کوئی ایسا شخص جو یہاں ہے نہیں, بنے کو کیا خیال ہے کرسی ادھر نہ رکھ لیں, ادھر نہ رکھ لوں, کرسی ادھر نہیں ہونی چاہیے. وہ تو اپنی عقل سے بڑے اخلاص سے بھی اچھا مشورہ دیں گے, وہ نہیں دے سکتے, ادھر آنا پڑے گا. کبھی اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے دل کی بات نہ کریں. میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں, اگر آپ خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں صرف ایک ذات سے آپ اپنے دل کی بات کریں, اور وہ اللہ کی ذات ہے. نہ ماں سے, نہ بہن سے, نہ باپ سے, نہ فلاں سے, اور اللہ نہ کرے کہ معاملہ اتنا بگڑ جائے کہ آپ کو انسانوں سے لینا پڑے. کیوں؟ ٹرسٹ نہ کریں کسی دوسرے پہ. کیسے ٹرسٹ نہ کریں؟ آپ دیکھیے کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں مجھے وہ غلط مشورہ نہ دے دے, پتہ نہیں اس بیچارے کو پتہ بھی نہ ہو اور وہ میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ گڑبڑ کا کر دے. کبھی کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں, ورنہ اچھے بھلے بسے ہوئے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ہونا کہ دوست نے آپ کو دوست سمجھ کے کہنا, اور وہ بے وقوف دوست ہے جو آپ کے شوہر سے پوچھے بغیر, اس سے بات کیے بغیر آپ کو کوئی مشورہ دے دے. 10 باتیں بھی کوئی آ کے کہے گا نا کہ یہ میرے شوہر کا مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ تو دن رات یہ کام چلتا ہے, آپ کو بتایا کہ ہمارا یہ پورا فیلڈ ہے دکھ سکھ کے نام پہ. سنیے 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 سنیے, دوسری طرف ذرا مرد کی تو سنیں. بعض دفعہ کوئی اپنی دوست کی بات بتاتا ہے تو میں ان کی تھوڑی سی سن کے ان کو کہتی ہوں کہ پلیز اپنی دوست سے کہیں کہ ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کریں. یقین کریں کہ جب وہ ان کی دوست بتاتی ہیں نا, ایسے عام ہوتا ہے, ہمیشہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی کوئی دوست نہیں ہوتی ہے نا, اتنا ترس آ رہا ہوتا ہے اس لڑکی پہ کہ دل چاہتا ہے جا کے اس کی مدد کرتے ہیں. وہ ایسی اس کا میاں ایسا ایسا ہے, بیچاری بیچاری بیچاری. یقین کریں جس وقت آپ اس کی دوست سے بات کریں نا, تو وہ بیچار پن مجھے 50% کم لگتا ہے. اتنی تو بڑی بات کوئی نہیں ہے جتنی اس کی دوست نے بنائی بھی تھی. اچھا خیر 50% پھر بھی لگتا ہے کہ واقعی میاں کی زیادتی ہے. بھئی آپ اپنے میاں سے بات کرائیں, یا آپ اپنے میاں سے کیوں کریں. یقین کریں میں خود اس بات کی آپ کو 20 گواہیاں دے سکتی ہوں. جو ہی ہم نے اس مرد کے ساتھ بات کی تو مرد نے کہا کہ اب آپ میرے سے سنیں. دونوں سن رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ مرد اکیلے میں کرتا ہے عورت اکیلے میں. یعنی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں جس نے, میں بہت سیکھتی ہوں لوگوں سے. ایک کپل تھا کسی بھی دوسرے ملک میں, یہ امریکہ کی بات ہے, چل رہا معاملہ جو بھی ہے قصہ مختصر, لیکن یہ بہت اچھی بات لگی کہ جس نے ہم ان کو ہم سے ملوایا تو اس نے کہا کہ اس کا ہسبینڈ بھی کاؤنسلنگ کے لیے تیار ہے. ورنہ عورتیں نا چھپ کے بات کرتی ہیں کہ میاں کو نہ پتہ چلے. خیر اس کے میاں کی بات بھی تھی. اچھا ہوا کیا کہ ایشو کیا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا میاں گھر میں آتا ہے تو بات نہیں کرتا, وہ سارا دن اکیلی رہتی ہے, وہ یہ ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے. جو ساری بات کا خلاصہ نکلا آپ حیران ہوں گے سن کے, اس مرد نے جو بات کی, پہلی بات ہے وہ اپنی بیوی کو آپ کہہ رہا تھا, یہ نہیں کہتا کرتی ہے, یہ کرتی ہیں. اتنی عزت سے بلا رہا تھا اپنی بیوی کو انر سے, جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پڑھا لکھا شخص ہے. کہنے لگا آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں, میں صبح جاب پہ جب جاتا ہوں اور اس کے بعد کام پہ آتا ہوں کتنے گھنٹے اس نے بتایا. کہتا جب ایک عورت میرے بعد اپنے ٹیلی فون پہ 6 سے 7 گھنٹے باتیں آلریڈی کر چکی ہے, تب میرے سامنے اس کو بات کرنے کی طاقت کہاں ہوگی. भाई आप क्या हुआ? कहता कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये इतना फोन यूज करती है, इतना यूज करती है, लोकल कॉल्स अमेरिका में इंटर सिटीज भी फ्री हैं अपनी दोस्तों से फोन पे। कैसे? कहता मैं करता नहीं, लेकिन मैं फील करता था कि बच्चे घर आता हूँ वैसे पड़े हैं, घर गंदा है, काम नहीं हुआ हुआ, और मैंने ऐसे फोन में, आप मेरे फोन का चेक कर लीजिए, आपका भी सबका हो सकता है, नेट फोन के मिनट निकाले आपने कितने यूज किए कितने। कहता इसने एक दिन में 6 6 8 8 घंटे मेरे पीछे से टेलीफोन यूज किया होता है। तो मैं कहता हूँ जब सारा दिन पीछे से ये बातें करती रही है फोन पे, तो मेरे साथ ना ही करे, मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दूँ। और बिलीव मी, इतनी खूबसूरत, सिर्फ एक ही सेशन में उनकी काउंसलिंग हो गई थी, कि हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि आपने ये नहीं करना, आपने ये करना, उसके बाद वो मामला ही नहीं बना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इट्स ट्रू, और मुझे उसके मियाँ से बात करके लगा अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, मैंने इसके दोस्त के कहने पर इसको मशवरा नहीं भेज दिया कि फौरन अलग हो जाओ। इसी तरह मंगनियां टूट रही होती हैं, वो बातें करते हैं, यानी दोनों की सुने, ठीक है, अदरवाइज कभी मशवरा ना दें। आपकी दोस्त सच्ची है, अगर नहीं 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 मेरे मियाँ को ना बताना, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग। अगर आपकी कोई दोस्ती हो, कोई आपसे अपने घर की बातें करे ना, तो आप उसकी भी काउंसलिंग करें कि देखें आप अच्छी बात करें, हमेशा उसकी हिम्मत बनाएं। बीच में से वो कहते हैं ना, तीसरे को निकाल दें तो मियाँ बीवी ठीक हो जाते हैं, जहां बीच में कोई मशवरे देने वाला, अब ये दोस्त भी हो सकती है, ये खानदान की कोई सहेली भी हो सकती है, फैमिली का भी कोई बंदा हो सकता है, हत्तुल बसा कोशिश करें कभी दूसरों पे ट्रस्ट ना करें अपने शौहर के मामले में। आप कहें कि अल्लाह आप मुझे बताएं कि इस मर्द को मैं कैसे डील करूं। दोस्त को बड़ी अक्लमंद है, कोई बहुत 50 60 साल की जिंदगी उसने गुजारी, वो भी तो आप ही जितनी ना समझ होगी ना, तो लिहाजा इन छोटी छोटी बातों पर गौर करना चाहिए।